ओम श्री परमात्मने नमः। मानव जीवन विकास और निर्माण, इसकी एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर विकास निर्माण। विकास और निर्माण में, विशेष रूप से जब निर्माण की बात आती है, तो निर्माण के साथ पुराने का नाश, पुराने की समाप्ति भी आती है। निर्माण का अर्थ है कुछ नई बात लाना, कहें के स्थान पर कुछ पुरानी होगी उसके स्थान पर, तो कुछ पुराना छोड़ना और नया वहां लाना। और इस विध्वंस और निर्माण की सतत प्रक्रिया में विकास होता है। अब सारे मानव जीवन पर दृष्टिपात यदि करें तो बहुत बड़ी संख्या जो इस भूमंडल पर अभी उस प्रकार के मानवों की है जिनकी चेतना का विकास ऐसा नहीं हुआ कि अभी वो जो बातें मैं बता रहा हूँ या जैसा सत्संग हम करते हैं उसका महत्व समझ सकें, अर्थात जो अभी तामसिकता प्रधान और राजसिकता प्रधान हैं, उस बहुत बड़ी संख्या की बात तो छोड़ देते हैं। यद्यपि इस प्रकार की व्यवस्था है भगवान की इस भूमंडल पर के यात्रा में वो भी आएंगे, इसी तरफ घूम फिर करके सभी जीवात्माएं आखिर में जहाँ से उनका उद्गम हुआ है परमात्मा से, उसका ही अनुभव करके इस शांति को प्राप्त करती हैं। लेकिन अभी उनकी सब बात छोड़ देते हैं। जिन जीवात्माओं का की अवस्था ऐसी आ जाती है कि अब वो मानव जीवन की अंतिम बात चाहते हैं जिसके बिना जीवन अपूर्ण रहता है, तो जब उनका जीवन देखते हैं तो कुछ जीवात्माएं बहुत थोड़ी तो ऐसी होती हैं जिनका जन्म तो होता है लेकिन प्रारंभ से ही पिछले जन्मों के विकास के कारण कुछ समय में ही वो उस परम उद्देश्य की तरफ चल पड़ते हैं और उसकी उन्हें प्राप्ति हो जाती है। आदि शंकराचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, समर्थ रामदास महाराज हों, स्वामी विवेकानंद हों, रामकृष्ण परमहंस हों और ज्ञानेश्वर महाराज हों, ऐसी जीवात्माएं होती रहती हैं। यद्यपि जो कुछ मैं बतलाने जा रहा हूँ किसी अंश में तो उनके जीवन में भी वो बात होंगी, होती ही हैं, लेकिन कुछ बातों का उनके जीवन में अनुपात कम होता है। तो जन्म होने के बाद विकास की प्रक्रिया में शिक्षित होना, अपने अपनी परिस्थिति में अपने अपने समय पर शिक्षा प्राप्त करना, जैसी जैसी भी शिक्षा जिस समय हो रूप बदलता रहता है, उसका सबका प्रयोजन क्या है शिक्षण का, कि वो जो अभी बचपन में है वो विकसित होकर के ऐसी स्थिति में आ जाए कि इस संसार की यात्रा अपने बल पर पूरी करने में समर्थ हो जाए, ये प्रयोजन है। मैं इसेंस बता रहा हूँ, सब बातों का सार बता रहा हूँ, अर्थात उसकी दूसरों की निर्भरता समाप्त हो जाए, आर्थिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी, निर्णय लेने की क्षमता के रूप में भी, इस योग्य बन जाए कि अपनी ही सामर्थ्य से इस संसार में चल सके, और फिर जो जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों का वो मुकाबला कर सके, ये प्रयोजन होता है। अब यहाँ जो बैठे हैं लोग, उनमें कुछ बच्चे हैं, संख्या कुछ भले उनकी कम ही हो पर हैं, उनके लिए अध्यात्म इस समय सबसे बड़ा ये है कि वो पहले अपने को ऐसा बना लें कि उनकी निर्भरता माता पिता पर और दूसरे लोगों पर न रहे, अपना स्वतंत्र जीवन जीने की सामर्थ्य में हो जाए। सार रूप में ये उनके लिए अध्यात्म है। ऐसी पढ़ाई करें, दूसरी बातें सीखें, घर में सीखें, शिक्षकों से सीखें, जहाँ भी सीखने को मिले, सीखते सीखते वो ऐसी स्थिति में आ जाएं कि संसार में जब वो प्रवेश करते हैं व्यवहारिक रूप में, तो कोई भी चैलेंज उनके सामने आ जाए उसको वो अपनी ही शक्ति से उसका सामना करने में समर्थ है, ऐसा उनको बनना है। अब वो बच्चे दो चार चार छः जो भी हैं यहाँ पर उनके लिए, लेकिन ये बातें सब आप रिकॉर्ड करते हैं यू रिकॉर्ड, हाँ, तो ये जिसके भी काम आएंगी, ये उनका अध्यात्म है। दूसरी स्टेज वो है जिसमें ये पहली स्टेज तो पार हो गई और संसार में हम आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, सामर्थ्य के रूप से, अपनी ही सामर्थ्य से चलने में समर्थ हो गए। प्रायः उस स्थिति में हमारे स्वयं संतान हो जाती है, विवाह आदि हो जाता है, संतान हो जाती है। तो अब इस दूसरी स्टेज में तो एक प्रमुख काम दूसरी स्टेज वालों का ये हो जाता है कि जिस संतान को जन्म दिया उसको अपने जैसी स्टेज में आने के लिए पूरा सहयोग दें हर प्रकार से, ये उनका अध्यात्म है। उनके अध्यात्म का सार ये है पूरा का पूरा कि वो उनके लिए जिए, तन से, मन से, धन से, मार्गदर्शन से, जैसे भी जहां जहां उन्हें ले जाना हो, जो जो उन्हें दिखाना हो, जैसा जैसा उन्हें पढ़ाना हो, जैसा जैसा उनकी व्यवस्था करना हो, जो स्वयं सीखा है अच्छा, जो अच्छी बातें स्वयं सीखी हैं, जिनको ये समझ में आ गया ये हमने अच्छी सीखी, वो उनको ट्रांसफ़र कर दें, वो उनको दें, ये दूसरी स्टेज। इस स्टेज से बिना निकले मनुष्य की शुद्धि नहीं होती है, आंतरिक शुद्धि, और वो जो ज्ञान प्राप्ति और भगवत प्राप्ति की अंतिम बात है उसकी योग्यता पैदा नहीं होती, ये जानने की बात है। इसमें को निकलना होगा, सारे जीवन एक सूत्र है, ऋण मुक्ति, ऋणों से मुक्त होना है। बचपन में माता पिता की सेवा करके बचपन में मुक्त हुए, बड़े होकर के बच्चों का देखभाल करके उनकी ऋण उतारा, और जब उस स्थिति में माता पिता भी हैं बच्चे भी हैं तो दोनों के प्रति कर्तव्य अपना कर्म, उससे ऋण उतरेगा। बंधन बहुत बड़ा क्या है जीवात्मा का, सूक्ष्म शरीर में विद्यमान ऋण है अनेकों के प्रति, वो ऋण चुकाना होगा। जैसे जैसे ये स्टेज पूरी हो, वैसे वैसे और इससे पहले भी आरंभ कर देनी चाहिए यात्रा उस अंतिम बात की तरफ। अंतिम बात की तरफ शुरू से भी आरंभ थोड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य वो है आखिर में। लेकिन जैसे जैसे ये सब बातें पूरी हों, अब मुख्य रूप से वही बन जाना चाहिए उद्देश्य कि इतना मैं कर चुका और अब जो वास्तविक प्रयोजन मानव जीवन का है वो मुझे प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। शरीर छूटने से पहले मुझे स्वरूप बोध होना चाहिए, भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, तो जीवन में परिवर्तन आएगा। तो मैंने बात बतलाई, सतत प्रक्रिया है निर्माण की और निर्माण में छिपा है ध्वंस। तो कई बातें पुरानी छोड़नी होंगी, ध्वंस करना होगा और उनके स्थान पर नई बातें उनसे सीखनी होंगी, संतों, गुरु हों, शास्त्र हों, महापुरुष हों, जहाँ जहाँ से जिस जिस के लिए जौन सी बात उसके विकास में सहायक है, ऐसी बुद्धि का विकास करना होता है। और ऐसे करते करते यदि इस प्रकार से, मैं तो संक्षेप में सार रूप में बता सकता हूँ इतने समय में, ऐसे करते करते यदि ठीक प्रकार से जीवन जिया गया तो ये आत्मज्ञान भगवत प्राप्ति की घटना हस्तामलकवत हाथ में रखे हुए आंवले की तरह ऐसी प्राप्त होती है, कोई विशेष बात नहीं इसमें। स्वयं अपने आप अंदर का सारा मैल समाप्त हो जाएगा, सारा ऋण मुक्ति हो जाती है और जो सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है उसका अनुभव घट जाता है। और उसका अनुभव घटने के बाद ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं ये बात अखबार में निकलवानी है या विज्ञापन छपवाने हैं या इनाम लेना है, इस बात का बताने की भी जरूरत नहीं है किसी को। क्या बताना है, सभी को प्राप्त हो सकता है, स्वयं अपनी कहानी का मालूम होता ही है। बहुत संक्षेप में मैंने ये बात बताई।